તારીખ 25-8-1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 207 અને 211 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 692
પત્રાંક 207 ચાલતા હૈ लल्लू जी को सत्संग कैसे करना उस विषय में कुछ सूचनाएं की हैं और स्वयं के विषय में संदेह का नाश करने का प्रश्न उठाया है। जो लोग आते हैं आपके समागम में उनसे प्रश्न करना कि आखिर में हमको हमारे विषय में क्या लगता है, हम भव्य हैं या अभव्य हैं, जैन कुल में जन्म लिया इसलिए क्या सम्यक दृष्टि है या अभी भी मिथ्या दृष्टि है। बहुभाग लोग मान लेते हैं कि जैन है इसलिए सम्यक दृष्टि तो है ही, अब व्रत आदि करने से श्रावकपन आएगा इसलिए व्रतादि तपस्रण आदि करना चाहिए, कुछ त्याग करना चाहिए। सुलभ बुद्धि है या दुर्लभ बुद्धि? सुलभ बुद्धि माने क्या? जिसको बोध का असर तुरंत होवे उसको कहते हैं सुलभ बोधि, और बहुत बोध प्राप्त होने पर भी असर नहीं होवे उसको कहते हैं दुर्लभ बोधि। तो अपने आप को तलाश करके देखना है कि हमको असर कैसी होती है बोध की। सत्य बोध की असर होती है तो सुलभ बुद्धि पना है, असर नहीं होती है तो दुर्लभ बुद्धि पना है। तो इस विषय में शंका नहीं होनी चाहिए, सुलभ बुद्धि है उसको शंका नहीं होती। अल्प संसारी है या अधिक संसारी? हमारा संसार अल्प है या बहुत है इस विषय में शंका किसको रहती है? जो दीर्घ संसारी है उसको, अल्प संसारी को नहीं होती। यह सब हमें ज्ञात हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार की ज्ञान कथा का उनसे प्रसंग रखना योग्य है। जो भी लोग आपके पास आता है तो इस प्रकार की ज्ञान चर्चा करना। अब कहते हैं, अभी जो पत्र का अंश है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ से वो बात तो लल्लू जी के प्रसंग के अनुसार चली, हमको तो परमार्थ उतना ही ग्रहण करना है कि हमारे पास अगर कोई आता है दो प्रश्न पूछता है तो हमें इस प्रकार से सत्संग करना चाहिए कि आने वाले को नुकसान नहीं हो और कुछ अंश में लाभ हो और अपने को भी नुकसान नहीं हो और लाभ हो। परमार्थ पर प्रीति होने में सत्संग सर्वोत्कृष्ट और अनुपम साधन है। परमार्थ माने क्या? परमार्थ माने अपना आत्मकल्याण, अपना आत्महित। यह प्रश्न विचारणीय है। यह प्रश्न विचारणीय है कि अपना आत्मकल्याण पर भी जीव को प्रीति नहीं आती, प्रीति किसको आती है कि जिसको सांसारिक रुचि कम हुई हो, संसार के पर प्रीति कम हुई हो, उसकी रुचि प्रीति परमार्थ पर जाएगी। और कोई ऐसा कहे कि हमको अभी तो इतनी रुचि प्रीति नहीं है, हम क्या करें, तो उसके लिए उत्तर है कि ऐसे होने में अपना आत्मकल्याण की रुचि भावना प्रीति बढ़ाने में सत्संग सर्वोत्कृष्ट और अनुपम साधन है। इससे आगे कोई उत्कृष्ट साधन नहीं, इसलिए सर्वसे उत्कृष्ट साधन है और इसकी कोई उपमा हम दे नहीं सके, ऐसा एक अनुपम साधन है। परंतु इस काल में वैसा योग होना बहुत विकट है, परंतु इस काल में परमार्थ पर आत्मकल्याण पर प्रीति उत्पन्न हो वैसा सत्संग का योग मिले, ये बहुत विकट है। विदेश में तो कहीं है ही नहीं, यूरोप अमेरिका तो हम जाके आए हैं, विदेश में तो सत्संग है ही नहीं, और वहाँ जो गए हैं उनको तो सत्संग वहाँ से निकल करके इधर आए तब तो मिले, इसके पहले मिलने का कोई प्रसंग नहीं है। यहाँ से विद्वत लोग जाते हैं लेकिन कोई यथार्थ सत्संग मिलता है सो बात नहीं है। सीखी सिखाई पढ़ी पढ़ाई बात कर लें, इसमें कोई सत्संग मिल जाए और परमार्थ पर प्रीति उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं बनता। एंटवर्प में इस वक्त जो सत्संग चलता था तो वहाँ हमारे बम्बई के गुजराती लोग भी सत्संग में आते थे खास करके, और ख़ास करके कृपालु देव के मानने वाले लोग थे। यही कहते थे यहाँ सत्संग नहीं है। कुछ एक लोग थे फिर भी आपस में मिलकर के सत्संग नहीं करते थे, वो लोग थे वो उतने सत्संग हफ्ते में एक आध टाइम मिलते थे वो लोग, कि हर संडे को या हर सैटरडे को मिलना। अब असत्संग और कुसंग तो यहाँ से बहुत बड़ा है, वहाँ हिंदुस्तान से यूरोप में तो असत्संग और कुसंग तो बहुत बड़ा है। तो थोड़ा बहुत एक दो जो रुचि वाले थे उनके तो क्या करें, सत्संग में इतना अच्छा लगता है लेकिन यहाँ तो सत्संग है ही नहीं, ऐसा दो चार घंटे में बैठे, दो चार दिन बैठे, दो दो घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे अच्छा लगा लेकिन यहाँ मिलता नहीं ऐसी चीज़। हम बोले आप इधर क्यों आए, पैसा बढ़ाने के लिए है, क्यों आए, पैसा नहीं था वो मिलने के लिए प्राप्त करने के लिए नहीं आए आप लोग, पैसा तो बहुत था, बम्बे में भी अच्छा बिजनेस बहुत चला और कुछ पैसा ज़्यादा मिल गया तो बढ़ाने के लिए एक नई ऑफिस एंटवर्प में भी खोल दी। वहाँ तो ऑफिस ऑफिस लेना और बिजनेस करना इंटरनेशनल फील्ड पर वो तो ताकत वाले का ही काम होता है, कोई मामूली लोगों का तो वो काम होता नहीं। जो बहुत करोड़पति है, 5-10 करोड़ वाले का काम नहीं है वो, क्या 10-20 करोड़ वाले का काम नहीं है वहाँ, 25-50 करोड़ और आगे वाले का काम है, इससे आगे वाले का काम है वो, जिसके यहां हम ठहरे थे उसका घर खर्चा 1-2.5 करोड़ का था। कितना? ये हमारा घर खर्च का 1.5 करोड़, घर खर्च 1.5 करोड़ का आता है। समझ लेना चाहिए कि लोग कितने मान संपन्न। आप लोग क्यों आए इधर? कि पैसा बढ़ाने के लिए आए? तो समझिए कि जानते तो है सब कुछ। हमने भी थोड़ा माथा मारा था एक मार्केट में थोड़ा, तो पता चल गया था कैसे कैसे लोग यहाँ बिजनेस करते हैं। तो पैसा बढ़ाने के लिए इधर आए, क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, अनुकूलताएं मिलेगी। पैसा मिलने से क्या मिलेगा? अनुकूलताएं मिलेगी। अनुकूलता किसको मिलेगी? शरीर को मिलेगी। देहार्थ के लिए आए ना, अब आत्मार्थ के लिए वापस चलो। देहार्थ के लिए इधर आना हुआ तो आत्मार्थ के लिए उधर चल जाओ, उसमें क्या है? पर कितना भी संयोग में पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन सब छोड़ के जाना है, सब छोड़ के जाना है। क्या काम की चीज? तिरियंज गति का कारण बनाया और तो कोई बनी बात बनी नहीं। जैन लोग है, मांस दारू नहीं पीते हो तो नरक गति में तो नहीं जाओगे, लेकिन तिरियंज गति में तो जाना ही पड़ेगा। व्यापारी लोग का तो यही हालत है, पशु गति में ही जाना पड़ेगा। देखो क्या करना है आपको, देखना है। लेकिन आपको आपके परमार्थ में आत्म कल्याण पर कितनी प्रीति है, अपने आत्म कल्याण की प्रीति कितनी है वो देख लो। जिसकी जहां प्रीति होती है वहीं उसका कार्य क्षेत्र रहता है। तो ऐसा नहीं है तो इसके लिए सत्संग सर्वोत्कृष्ट और अनुपम साधन है, परंतु इस काल में वैसा योग होना या वैसा योग मिलना, सत्संग यथार्थ मिलना बहुत विकट है। ऐसा नहीं है कि धर्म की चर्चा या वांछन कर ले इसलिए सत्संग यथार्थ हो गया, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जीव को इस विकटता में रहकर, इस विकटता में मैंने सत्संग का अभाव में रह करके सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विकट पुरुषार्थ करना योग्य है। तीव्र भावना सत्संग की होगी तब सत्संग मिलेगा। सत्संग के अभाव में सत्संग की प्राप्ति कैसे होगी? कि तीव्र सत्संग की भावना होगी, सत्संग प्राप्ति की भावना होगी तब सत्संग का योग बैठेगा, इसके पहले नहीं बैठेगा। और वह यह है, यह वो पुरुषार्थ क्या है कि अनादि काल से जितना जाना है उतना सभी अज्ञान ही है, उसका विस्मरण करना। जो सुबह बात चली थी कि अभी तक जितना जाना है वो सभी अज्ञान है, वो भूल जाना है। अगर वो पकड़ के बैठे हैं, वो पूर्व का पूर्वाग्रह हो गया, तो जो यथार्थ सत्संग मिलेगा वो भी निष्फल जाएगा, वो सफल नहीं होगा, उसको विस्मरण करना है। अब मुझे मेरे आत्मकल्याण का विषय में बस एक ही प्रयोजन से जो कुछ करना है सो करना है, इसके सिवा और कुछ नहीं करना है। ऐसा एक दृढ़ निश्चय करना होगा। सत सत ही है, सत मैंने सन्मार्ग है, आत्मकल्याण है, वो तो जो है सो है। सत असत नहीं है कभी, सत है वो तो हमेशा सत ही है। बहुत गुड वचन लिखे हैं। आत्मा सत है वो हमेशा सत ही रहता है, उसका पारमार्थिक स्वरूप कभी नहीं बदलता। एक उसकी प्राप्ति का जो मार्ग है वो भी सत है, आत्मा भी सत है और सन्मार्ग भी सत है। सन्मार्ग तो सत वत्ता मार्ग, उसकी संधि को सन्मार्ग कहते हैं, तका न हो जाता है ऐसे, वो तो संधि है, तो वो भी सत है पर वो सरल है। सन्मार्ग है वो असरल नहीं है। बहुत सरल है, सरल नहीं है, बहुत सरल है। और सरलता वाले को ही इसकी प्राप्ति होती है। किसको प्राप्ति होती है? सरलता वाले को। इसलिए सत सरल है, सन्मार्ग भी सरल है। जितना खुद सरल होता है उसको प्राप्ति सरलता से होती है, जितना खुद टेढ़ा चलता है उसको प्राप्ति दुर्लभ होती है। इसलिए सत सत ही है, सत सरल है, सुगम है, अपेक्षा से सुगम है, अपेक्षा से दुर्गम है। बात तो दोनों है। अगर सर्वथा सबों के लिए एकांत सुगम होता तो सबको मिल जाता, सबको उसका गम पड़ जाता, वो गम्य हो जाता। लेकिन खुद सरल नहीं है, खुद पात्र नहीं है, तो मार्ग भी सुगम नहीं है। यानी एक प्रश्न उठाया जाए कि सत किसके लिए सरल और सुगम है, ऐसा एक प्रश्न उठा सकते हैं कि किसके लिए सत सरल है और सुगम है। कि जिसको जीवन में मात्र आत्मकल्याण करना है और कुछ नहीं करना है, इसके लिए सरल और सुगम है। और जिसको संसार में से कुछ चाहिए, यानी संसार चाहिए, संसार में से कुछ चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? संसार चाहिए, उसमें दो ही बात है। एक लोभ का विषय और एक मान, मान प्रकृति का विषय। कुछ लोगों को अनुकूलताएं चाहिए, एक अनुकूलता में पांचों इंद्रियों का विषय का समावेश है, एक अनुकूलता में सब आ गया। तो कुछ ऐसी कोई बात है, उनको तो कहते हैं कि उसको लोभ है, बाह्य पदार्थ की इच्छा, उसको कहते हैं लोभ। और इसको ऐसा होता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, कोई अभी हम प्रयत्न नहीं करते, जो कुछ है सब आसानी से मिलता है हमको तो। लेकिन प्रतिष्ठा, आबरू, मान, कीर्ति ये होना और हमारा अपमान, अपकीर्ति और हमारी निंदा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी प्रशंसा होना चाहिए, हमें मान मिलना चाहिए, हमारा सम्मान रहना चाहिए, हमारे आबरू कीर्ति अच्छी होनी चाहिए। मुख्यतया मनुष्य गति में मान से छूटना बहुत कठिन है। ये दो में से जिसको कुछ नहीं चाहिए और केवल आत्मकल्याण ही चाहिए, आत्महित ही करना है, उसके लिए सत सरल है और सुगम है, इसके लिए कठिन नहीं है, बाकी दूसरों के लिए कठिन है। क्यों? कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। संसार के पदार्थ और मान भी चाहिए और सन्मार्ग भी चाहिए, दो बात एक साथ मिलने वाली नहीं है। तो इससे जो उपेक्षित होते हैं, मान और लोभ के विषय में जो उपेक्षित हैं, उनके लिए मार्ग सरल है और सुगम भी है। जी हाँ, अनुकूलता की इच्छा, अनुकूलता वर्तमान में है और भविष्य में बनी रहे, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारी अनुकूलता भविष्य में चली जाए, यहाँ तक बात साफ होनी चाहिए। वर्तमान में है इसलिए जरूरत नहीं है, वो बात भी नहीं, भविष्य की चिंता है तो इस मार्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रवेश तो आत्मचिंतना से होता है। तो अनात्मा की जो चिंता है वो आत्मचिंता को आने ही नहीं देगी। अनात्मा की चिंता आत्मचिंतना को उत्पन्न नहीं होने देती, पर आत्मचिंतना जिसको होती है उसको अनात्मा की उपेक्षा हो जाती है। जो भी होगा देखा जाएगा, वर्तमान में मुझे मेरा काम कर लेना है, मेरा आयु समाप्त होवे उसके पहले पहले किसी भी कीमत पे, क्या इसका नाम सर्वार्पण बुद्धि है, किसी भी कीमत पे मुझे कर लेना है, एट एनी कॉस्ट। ये सर्वार्पण मेरे हित के लिए है, मैं अर्पणता मेरे लिए कर रहा हूं, कुछ किसी और के लिए नहीं। तो उनका क्या है, जो स्वामित्व है अन्य पदार्थ पर वो ढीला हो जाएगा, अपनत्व है वो ढीला हो जाएगा। तो मुझे मेरे लिए कुछ कोई भी कीमत से काम कर लेना है, क्योंकि मेरे तो मेरे लिए करना है, दूसरों के लिए तो करना नहीं है। ऐसी जिसको परमार्थ पर प्रीति होती है उसका कल्याण हो जाता है, और ऐसी प्रीति नहीं होती तो सत्संग से हो सकती है, कोई साधन है, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। इसलिए सत सरल है, सुगम है, सर्वत्र उनकी प्राप्ति होती है, उसमें कोई क्षेत्र की पाबंदी नहीं कि हम कोई तीर्थ क्षेत्र में रहे या निवृत्ति क्षेत्र में रहे या महाविद्य क्षेत्र में रहे या भावनगर में रहे, ठीक पैर के नीचे तो बात तभी आएगी ना, या सोनगढ़ में रहे या कुछ ऐसी जगह रहे तो हमको प्राप्त हो गए, ऐसी कोई पाबंदी बिल्कुल नहीं है। जब जीव को आत्मकल्याण करना ही है तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, सर्वत्र, कोई क्षेत्र के लिए मना ही नहीं किया, कोई क्षेत्र की मना नहीं है उसमें, कहीं भी हो सकता है, परंतु परंतु करके बात रखा है, एक शर्त रखी है, परंतु सत को बताने वाला सत चाहिए, इसके बिना सर्वत्र प्राप्ति होती है वो बात भी नहीं है। तो इसके लिए वो क्षेत्र है कि जहाँ कोई सत को बताने वाला होवे वही उनके लिए सद प्राप्ति के लिए अनुकूल क्षेत्र है, उतनी बात रखी है कृपाल देव ने। बाकी तो सिद्धांत लिख दिया कि सत सरल है, सुगम है, हाँ सर्वत्र इसकी प्राप्ति हो सकती है, होती भी है, परंतु एक दफे तो सत को बताने वाला सत चाहिए। वो बात सुगानी जी ने भी अपने 32 नंबर के पत्र में लिखी है कि एक बार तो कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है तभी सत पर लक्ष्य आता है, और कोई संस्कार मिलता है तो दूसरे भव में नैसर्गिक सम्यक दर्शन होता है, बाकी बहुभाग तो अधिगमज सम्यक दर्शन ही होता है। और कुछ एक केस में किसी को नैसर्गिक सम्यक दर्शन होता है, उसको अधिगम जो निमित्त है वो पूर्व भव में मिलता है। और वो बात प्रत्यक्ष है कि दिया से दिया जलता है, बिना दिया घी और घी वाली वाट होती है ना, अरबों वर्ष पड़ी रहे तो भी अपने आप दिया इसमें जलने वाला नहीं है, दिया से दिया जलता है। नए अनंत है, कुछ बात चली है नए के विषय में, कुछ प्रश्न पूछे होंगे, तो कहते हैं कि नए तो अनंत है, नए माने क्या? एक ही पदार्थ को देखने का कुछ एक दृष्टिकोण को नए कहते हैं। एक ही पदार्थ को, पदार्थ के एक ही गुण को, एक ही धर्म को या एक ही अवस्था को अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अवस्था वो की वो है, पदार्थ वो का हो, लेकिन अनेक प्रकार से उसको देखा जाता है। उस देखने का सही दृष्टिकोण को नहीं कहते हैं, क्या? न्याय संपन्न दृष्टिकोण को नहीं कहते हैं। न्याय शब्द भी नहीं में से ही आया है। तो ऐसा देखने का प्रकार कितना है? अनंत है। कितना दृष्टिकोण है? अनंत है, 1,2,4,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, है और प्रत्येक पदार्थ में अनंत गुण धर्म है, इसका विषय भी अनंत है, पदार्थ देखने का नय भी अनंत है और वस्तु में ऐसे गुणधर्म भी अनंत है। देखो नय विषय करता है, ज्ञान विषय करता है, उनमें अनंत नय परिणमित होते हैं और ये गुणधर्म को परिणमन देखने का परिणमन करने वाले अनंत गुण धर्म को देखने का परिणमन करने वाले अनंत नहीं है। तो फिर एक या दो चार नई पूर्वक बोला जा सके ऐसा कहाँ है कि हम तो एक ही नई से बात करेंगे या दो ही नई से बात करेंगे या दो चार नई से बात करेंगे, ऐसा जरूरत नहीं है। मुमुक्षु की भूमिका में खास करके इस नहीं से ऐसा है न उस नहीं से ऐसा है, उसमें ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों कि पदार्थ को अनुभव ज्ञान से जाना नहीं, और वो जानना प्रमाण ज्ञान में होता है। तो जानना सबसे प्रथम प्रमाण ज्ञान में होता है। ऐसे जाने बिना नए ज्ञान की यथार्थ प्रवृत्ति किसी को होती नहीं। अब भूल कहाँ होती है कि जो लोग अनुभव ज्ञान में तो आए नहीं, मुमुक्षु की भूमिका में अनेक प्रकार के शास्त्र का स्वाध्याय और पठन कर लेते हैं और नए के विषय में माथा लगाते हैं, इस नए से ऐसा है, उस नए से वैसा है, अनुभव ज्ञान है नहीं, तो नयादिक के विषय में कल्पना हुआ करती है। क्या होता है? कल्पना हो जाती है, वो कल्पना विपर्यास है। पर नए ज्ञान तो विपर्यास मिटने के बाद पैदा होता है, पर उसने पहले ही विपर्यास खड़ा कर दिया तो हालत और बिगड़ी। बहुभाग शास्त्र पढ़ने वाले को यही हालत होती है। इसलिए उसका ज्ञान और उलझन में आता है, घूंचवाई से उल्टा नो समझण में घूंचवण उत्पन्न करे छे। सुड़तालीस नई पर गुरुदेव के प्रवचन हुए हैं, अच्छी अच्छी बुद्धि वाले को समझ में नहीं आया ऐसी बात गुरुदेव ने की है। गुरुदेव तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र भी नहीं समझे थे, इतने विद्वान भी नहीं थे, लेकिन अंतर्ज्ञान था तो बहुत सूक्ष्म बातें की है। ये आया ना तीसरा प्रवचन नवनी तीसरा भाग में वो सब प्रकाशित हो गया अपने ट्रस्ट की ओर से, बहुत सूक्ष्म बातें की थी। हमारे वो एडिटिंग करते थे कनु भाई और ये हम पूछते थे कि क्या सब समझ में आता है, तो क्या नहीं, हम बोले आप लोगों ने एडिटिंग किया तो बात तो सब समझ में आती थी क्या, तो क्या नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है ये, तो अभ्यासी है फिर भी वो बात समझ में आ रही वैसी नहीं है, गोथा खा जाता है ऐसा विषय है। तो कैसे के अभी
समतावान मैंने धीरज रखी है,
उतावल से उसमें माथा लगाने की जरूरत नहीं है। समतावान मैंने संभव की बात नहीं है, अपन नहीं कहते कोई
थोड़ी बहुत उतावल करता है, जरा क्षमता रखो, भी क्षमता रखो, थोड़ी क्षमता रखो,
धैर्य
धीरज,
तो इस विषय में थोड़ा धैर्य रखना अच्छा है।
अभी आपका काम
नहीं है, नए ज्ञान ज्ञानियों को ही होता है, इसलिए ज्ञान हुए पहले उसमें उतना माथा लगाना अच्छा नहीं है, और बहुभाग वाद विवाद का ही कारण बनता है। और हमारे यहाँ ये परिस्थिति खड़ी भी हो गई है कि आपस में विगत लोग उसमें वाद विवाद कर लेते हैं। ज्ञानियों की वाणी नए में उदासीन रहती है, उस वाणी को नमस्कार हो। वो नई पद्धति से नहीं बोलते, नई ज्ञान है इसके पास, लेकिन शास्त्र की जो नई पद्धति होती है वो आचार्यों की जबरदस्त बात है। ज्ञानी की वाणी जो है वो तो अपने अनुभव वाणी से ही बोलते हैं, वो शास्त्र वाणी से नहीं बोलते, तो उस विषय में उदासीन हो जाते हैं। ऐसी जो अनुभव प्रधान ज्ञानी की वाणी है उस वाणी को कृपा गुरुदेव नमस्कार करते हैं। देखो कैसी बात की है,
कोई चर्चा चली होगी
नई के नए विषय में, नई पद्धति के विषय में, बोलने के विषय में, लिखने के विषय में, कि आप तो क्षमता रखिए, ज्ञानियों की वाणी भी उन्हें इसमें उदासीन है, वो भी
शास्त्र की नई पद्धति को अंगीकार करते करके उस प्रकार से नहीं बोलते, वो अपने अनुभव पद्धति से बोलते हैं, पर वही शास्त्र है उनके लिए,
वो भी एक
शास्त्र है। और भी एक दो बात उसमें विशेष है, वो ऐसी है कि किसी एक नए से एक ही बात उपादेय है, किसी दूसरे नए से वही बात है ही है। अब वाद विवाद नहीं हुए तो क्या हो गया बोलो बताइए। हाँ, जैसे दृष्टांत ले ले, पर्यायार्थिक नए से आत्मकल्याण करना, मोक्ष प्राप्त करना, आत्महित करना उपादेय है पर्यायार्थिक नहीं से। परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से वो बात नहीं है, उसमें तो सिर्फ द्रव्य की ही उपादेयता है, पर्याय की उपादेयता का कोई वहां अवकाश ही नहीं है, एक अपना परमात्मा स्वरूप ही उपादेय है,
दूसरा कुछ उपादेय
है ही नहीं। तो जो मोक्षाभिलाषी था वही मोक्ष के विषय में उदासीन हो जाता है, तो हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, और जिसको मोक्ष नहीं चाहिए उसको परमेश्वर क्या देगा उसका विचार कर लेना,
मतलब वो बात भी एक समझने लायक है। तो मोक्ष उपादेय भी है
और उपादेय नहीं भी है,
और वाद विवाद कहाँ चले गए, चले कि नहीं चले बताइए।
तो उस नहीं से ऐसा है ना उस नहीं से ऐसा है कि ज्ञानी की वाणी उदासीन है, ज्ञानी की वाणी उस विषय में उदासीन है।
दूसरी बात और भी है,
बहुत सी बातें हैं इसमें, तो चारों अनुयोग में अनुयोग अनुसार सिद्धांत है, द्रव्यानुयोग में द्रव्यानुयोग के सिद्धांत है पदार्थ विज्ञान का, कर्णानुयोग में कर्म का बंधन कैसे होता है,
कैसे कैसे प्रकार के होता है,
उसकी स्थिति कैसी होती है, उदय कैसा होता है, छूटना कैसा होता है, सब बातें सैद्धांतिक रूप से हुए हैं, इसके भी सिद्धांत हैं, जिसमें कर्म और जीव के शुद्ध अशुद्ध पर्याय के निमित्त नैमित्तिक संबंध का सिद्धांत हैं, और वो भी अनंत प्रकार के हैं। क्यों? तो पर्याय का भी अनंत प्रकार है, दोष का अनंत प्रकार, तो कर्म का भी अनंत प्रकार, कर्म अनंत प्रकार ना तेमा मुख्य आठ तेमा मुख्य मोहन, तो करुणानुयोग की बातें हैं। चरणानुयोग में भी चरणानुयोग के सिद्धांत हैं, आचरण के सिद्धांत हैं, श्रावक का आचरण कैसे होना चाहिए, मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, इसके भूमिका के सिद्धांत हैं, भूमिका बाहर कैसे होना, भूमिका की मर्यादा क्या है, उसके भी सिद्धांत हैं, ये सब कानून है, सिद्धांत है माने कायदा कानून है। अब कभी कभी ये बातों का अध्यात्म के विषय में उल्लंघन होता है, क्या करोगे, और अध्यात्म है वो सर्वोत्कृष्ट विषय है, चारों अनुयोग का, चारों अनुयोग का सर्वोत्कृष्ट कोई क्रीम है तो वो अध्यात्म है, पर कभी कभी अध्यात्म में सबके ऊपर वो लेवल ही अलग है, जैसे ट्रेन है कार है वो जमीन पे चलती है, उसके स्पीड की कुछ लिमिट होती है, उसकी लिमिट जहाँ पूरी होती है वहाँ प्लेन की लिमिट शुरू होती है। एक घंटे में 200-300 किलोमीटर होगी बात पूरी ट्रेन की कार की, पर प्लेन की तो वहाँ से शुरुआत होती है, फिर आगे वो 400-500-600-700-800-1000-1200 किलोमीटर पर जाता है घंटे में। हाँ? तो लेवल ही अलग हो गया ना, अध्यात्म का लेवल ही कुछ और है। तो ज्ञानी है वो अध्यात्म में आए हुए हैं, वो जमीन पर चलते नहीं, वो हवा में चलते। क्या करोगे। तो कुंद कुंदाचार्य 50वीं गाथा नियम सार में बोलेंगे, क्षायिक भाव भी है। क्षायिक भाव में केवल ज्ञान आ गया, क्षायिक सम्यक दर्शन आ गया, यथाख्या चारित्र आ गया, आत्मा का परमानंद भी आ गया, और क्षायिक पुरुषार्थ भी आ गया, सबक श्रेणी वाला अनंत पुरुषार्थ भी आ गया। क्षायिक भाव भी है परद्रव्यम परभावम हेयम इति, पर द्रव्य है, पर भाव है, और हे है जाओ। ये भावना का प्लेन उड़ता है जिसमें केवल ज्ञान की भी दरकार नहीं रहती। तो ऐसी ऐसी बातें शास्त्र में है, वहां नहीं का झगड़ा डाले तो उससे कोई निबेड़ा आता नहीं है। तो ज्ञानी की वाणी उदासीन है, नया दिक में ज्ञानी की वाणी उदासीन है, उस वाणी को नमस्कार हो कि जिस वाणी में केवल परमार्थ ही परमार्थ है, आत्मकल्याण ही आत्मकल्याण है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी वाणी को हम नमस्कार करते हैं। और वही वाणी में सच्चा न्याय है या पारमार्थिक न्याय है। नए में तो नयार्थ होता है, लेकिन यहाँ काम है परमार्थ का, केवल नयार्थ का काम नहीं है, क्योंकि उसमें तो न्याय की बात आएगी। न्याय का एक लेवल है, परमार्थ का कोई दूसरा लेवल है, ऐसी बात है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, इसलिए लल्लू जी को लिखते हैं कि आप भी समता भाव रखिए, कुछ बताने योग्य बात होगी तो आपको आगे बताएंगे। क्योंकि कृपालु देव का नए ज्ञान भी असाधारण था, कितना सामान्य नहीं था, असामान्य था। उसने वो लिखा है ना, एवं भूत नहीं से ऐसा हो, ये सब नई का उसे लिया है ना, शपथ के पत्र में नहीं, और जगह अनेक नयों की बात किया है इसमें, एवं भूत नहीं और ऐसे नहीं और वैसे कई प्रकार के नई की बात, तो कारण कार्य का लॉजिक लिया है उसमें। तो उनके ज्ञान भी नए के विषय में अज्ञान था इसलिए ऐसा लिखा है, वो बात नहीं है। नए के विषय में बहुत ज्ञान था इसका टोटल ये लगाया है। तो भूमिका अनुसार वो बात करते हैं, अगले की योग्यता देख करके बात करते हैं। विशेष किसी प्रसंग से, तो इस विषय में कोई विशेष बात और प्रसंग में आपको बताएंगे, अभी तो आप धीरज रखना और उसमें अभी माथा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब वो है। यहाँ यह पत्र समाप्त होता है, उसी विषय में दूसरा पत्र है 211 नंबर का, वो पत्र शायद अम्बालाल भाई पर है। पत्र का जो हेडिंग है वो भी सत के विषय में है। सत कुछ दूर नहीं है परंतु दूर लगता है और यही जीव का मोह है। क्या कहते हैं कि सत कुछ दूर नहीं है, अपना स्वरूप है, स्वयं का ही स्वरूप है। तो स्वयं अपने आप से कितना दूर है? तो बिल्कुल दूर नहीं है, फिर भी दूर लगता है। इसका क्या कारण है कि जीव को पर पदार्थ के प्रति मोह है, इसके कारण से वो दूर लगता है। दूर लगने का एक ही कारण है, मोह के कारण से दूर लगता है। क्यों? के भाव में जो दर्शन मोह हुआ वो ज्ञान की अपेक्षा से भ्रांति है, श्रद्धा की अपेक्षा से मिथ्या श्रद्धा यानी दर्शन मोह है, और ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान में एक भ्रांति है। वो भ्रांति से पदार्थ का जैसा स्वरूप है, स्वपर पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं ज्ञान में आता, ज्ञान में नए रूप नहीं होता, वो भ्रांति के कारण से होता है। यानी भ्रांति है वो स्वयं एक ज्ञान पर एक आवरण है। भ्रांति वो क्या चीज है कि ज्ञान पर एक आवरण है, इसलिए पदार्थ दिखता नहीं, अपने चर्चा तो हुई थी, सुबह ही हुई थी, सुबह के स्वाध्याय में, कि आत्मा पदार्थ अपना स्वरूप वस्तु स्वयं अनंत प्रत्यक्ष है। कितना है? अनंत प्रत्यक्ष है, लेकिन आवरण तम मैंने आवरण रूपी अंधकार के कारण से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता नहीं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रहता नहीं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं थत, प्रत्यक्ष होवा छता पर ये आवरण से दर्शन वो ने लेने से ज्ञान में भ्रांति ने लेने से। इसलिए सत कुछ दूर नहीं है, कुछ मैंने बिल्कुल दूर नहीं है, बिल्कुल परोक्ष नहीं है, दीपचंद जी लिखते हैं अनुभव प्रकाश में कि अपने परमात्मा को दूर मत देखो। क्या? अपने निज परमात्मा को दूर मत देखो, तो अनंत प्रत्यक्ष है परंतु लगता नहीं है, दूर नहीं है ऐसा लगता नहीं है। लगता तो है कि बहुत दूर है, क्योंकि मोह भाव से हम भाव में दूर चले गए, हमारे स्वरूप से विरुद्ध चलते हैं। हम मोह से कैसे चलते हैं? स्वरूप से विरुद्ध चलते हैं मोह भाव के कारण से। तो हम दूर जाते हैं, तो दूर जाएंगे भाव में तो दूर लगेगा ही। मतलब दूर किसको लगता है? कि जो मोह भाव से दूर गए हैं उनको दूर लगता है, मोह से दूर लगता है, या जीव का मोह है इसलिए दूर लगता है। इसका का मतलब क्या हुआ कि मोह से भाव में दूर गया तो लगेगा कि दूर है। ये जो आत्मज्ञान है ये बहुत चमत्कारिक बात है। इसका चमत्कार का प्रभाव ऐसा है कि इसको समीप जाने वाले को उसका एहसास होता है। आत्मज्ञान होने होता है उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो समीप जाएगा उसको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे ऐसे परिणाम थे, शायद जीवन में मिटेंगे नहीं ऐसा लगता था, सहज रूप से दूर हो गया, ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। ये जिसको अपने ऐसे रस वाले परिणाम, विभाव रस वाले परिणाम मिटना बहुत कठिन लगे, उसको यूं सहज मात्र में चुटकी जैसे बजाते हो वैसे ही दूर हो जाए या दूर करने का आसान लगे, तो चमत्कार कैसा हाँ बहुत बड़ा चमत्कार है। तो ये बहुत बड़ी चमत्कारिक विद्या है, अध्यात्म विद्या तो बहुत बड़ी चमत्कारिक विद्या है कि संसार में भटकते भटकते छोटा जंतु हो जाता है, पामर प्राणी हो जाता है, कितना एक छोटा जंतु हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, देखते हैं कि नहीं देखते, छोटे मोटे जीव भी बत्ती के कितने जीव देखते हैं, क्यों हुए इतने पामर, क्यों हुए कि पर पदार्थ के पीछे पामरता के भाव के अपेक्षा वाले भाव पामरता के हैं, पर पदार्थ में से सुख लेने की अपेक्षा वाले भाव पामर भाव है, दीनता के परिणाम है। भाव दीनता, भाव पामरता हुई, द्रव्य में भी पामर हो गए। ऐसे पामर प्राणी को सिद्ध पद प्राप्त करा दे, तीन लोक का नाथ बना दे, वो चमत्कार कैसा है अपने, या वो हाथ चाला किसे करते हैं ना है? कि भाई एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था उसमें से कबूतर बना दिया और कबूतर में से आदमी बना दिया है, चमत्कार लगता है। पेटी में डालते हैं और निकालते हैं दूसरा, वो लोग तो कहते हैं कि ये तो एक चालाकी की बात है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन यहाँ तो संसार में पामरता से भटकना भटकने वाला पामर प्राणी को तीन लोग का नाथ बना देता है। दुखी 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 अनंत काल से दुख भोगने वाले को परम सुख की प्राप्ति कराता है। वो विद्या कैसी, एक चमत्कारिक विद्या है। और जो विभाव निकालने का अंदाज नहीं हुए उनको यूं ही हटा देते हैं, ऐसे ही हटा देते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा एक प्रभावशाली पदार्थ स्वयं सत्य है, बिल्कुल दूर नहीं है, मोह के कारण से दूर लगता है। जितना मोह अधिक, जितना मोह ज्यादा, उतना ही उसका दूर लगने का लगेगा, तो बहुत दूर है हमारे लिए, बहुत दूर है हमारे लिए, बहुत दूर है हमारे लिए, बहुत मोह को कम करो समीप दिखेगा, जितना दर्शन मोह को कम करो समीप दिखेगा। और ये दर्शन मोह को कम करने की योजना ज्ञानियों ने अनंत कृपा करके बताई है, बस ये योजना में शामिल हो जाओ, काम बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर जो 207 पत्र में बात आई थी उसी बात पर और थोड़ी विशेष चर्चा यहाँ पर की है कि सत जो कुछ है वह तो सत ही है, सरल है, सुगम है और सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है। परंतु अब दूसरा पहलू से बात किया, वहाँ ज्ञानी की अपेक्षा बताई कि ज्ञानी चाहिए अब कहते हैं कि परंतु जिस पर भ्रांति रूप आवरण तम आवरण का अंधकार छाया हुआ रहता है, उस प्राणी को उसकी प्राप्ति कैसे हो? जिसको बहुत भ्रांति है उसको प्राप्ति कैसे होगी? ऐसा करके प्रश्न उठाया, मतलब इसको होगी नहीं, तो उस विषय पर थोड़ा और भी प्रकाश डाला है इस पत्र में, समझ हुआ है। आगे का विषय कल के स्वाध्याय में।